नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। बेकी बेली की पुस्तक इजी टू लव डिफिकल्ट टू डिसिप्लिन बच्चों के व्यवहार पारिवारिक संघर्ष और अनुशासन पर केंद्रित एक व्यावहारिक पेरेंटिंग पुस्तक है। इसका उद्देश्य माता पिता को दंड धमकी लगातार निगरानी या मनुहार के चक्र से निकालकर सहयोग सिखाने वाली दिशा देना है। बेली का मुख्य तर्क है कि बच्चों को नियंत्रित करने से पहले वयस्क को अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया नियंत्रित करना सीखना होगा। पुस्तक कॉन्शियस डिसिप्लिन दृष्टिकोण से जुड़ी है, जिसमें अनुशासन को गलती पर सजा देने के बजाय आत्मनियंत्रण संवाद और जिम्मेदारी सिखाने की प्रक्रिया माना गया है। इसकी संरचना तीन जुड़े ढांचों पर टिकी है। माता पिता के लिए 7 पावर्स फॉर सेल्फ कंट्रोल, बच्चों के लिए 7 बेसिक डिसिप्लिन स्किल्स और व्यवहार में विकसित होने वाले जीवन मूल्य, अनेक घरेलू और स्कूल संबंधी स्थितियों के उदाहरणों तथा 7 सप्ताह के अभ्यास कार्यक्रम के माध्यम से पुस्तक अपने विचारों को लागू करने योग्य बनाती है। यह उन परिवारों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जो रोजमर्रा के टकराव को संबंध बिगाड़े बिना संभालना चाहते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, अनुशासन की शुरुआत बच्चे से नहीं, माता पिता के आत्मनियंत्रण से। पुस्तक का सबसे विशिष्ट विचार यह है कि अनुशासन केवल बच्चे के व्यवहार को सुधारने की तकनीक नहीं है। बेली के अनुसार, तनावपूर्ण क्षण में माता पिता की आवाज, चेहरा, शब्द और निर्णय बच्चे को उतना ही सिखाते हैं जितना कोई स्पष्ट नियम। इसलिए वह पहले वयस्क के आत्मनियंत्रण पर काम करने को कहती है। बच्चे के रोने, विरोध करने या आक्रामक होने को वयस्क के लिए अपमान अथवा चुनौती मान लेने पर प्रतिक्रिया प्रायः गुस्से, धमकी या जल्दबाजी में बदलती है। उस स्थिति में बच्चा भी शांत होना नहीं बल्कि शक्ति के दबाव के सामने झुकना या प्रतिरोध करना सीख सकता है। बेली के 7 पावर्स फॉर सेल्फ कंट्रोल में ध्यान, प्रेम, स्वीकार, परसेप्शन, इरादा, स्वतंत्र इच्छा और एकता जैसे विचार शामिल हैं। इनका व्यावहारिक अर्थ है कि माता पिता पहले अपनी अवस्था पहचाने, परिस्थिति की वैकल्पिक व्याख्या करें और फिर ऐसा उत्तर चुने जो दीर्घकालिक सीख को सहारा दे। उदाहरण के लिए, बेली की परसेप्शन संबंधी सीख यह चुनौती देती है कि बच्चा किसी को अनिवार्य रूप से क्रोधित नहीं कर सकता। प्रतिक्रिया का चुनाव वयस्क के पास रहता है। यह दृष्टि माता पिता पर दोष डालने के लिए नहीं बल्कि उनके प्रभाव क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए है। पुस्तक की प्रणाली में शांत और दृढ़ वयस्क बच्चे के लिए सुरक्षा, सीमाओं और भावनात्मक विनियमन का जीवंत मॉडल बनता है। दूसरा, भय आधारित दंड और अत्यधिक मनुहार दोनों के विकल्प के रूप में सहयोग। बेली पारंपरिक अनुशासन के 2 प्रचलित छोरों से असहमति रखती हैं। पहला छोर भय आधारित नियंत्रण है, जिसमें धमकी, शर्मिंदा करना, कठोर दंड या सत्ता का प्रदर्शन शामिल हो सकता है। दूसरा छोर लगातार समझाना, विनती करना या बच्चे की हर असहमति के सामने पीछे हट जाना है। पुस्तक का तर्क है कि पहला तरीका बाहरी आज्ञाकारिता तो ला सकता है, पर वह बच्चे को अपने व्यवहार और उसके प्रभाव को समझने का पर्याप्त अवसर नहीं देता। दूसरा तरीका सीमा की स्पष्टता कम कर सकता है और वयस्क को बार बार बहस में फंसा देता है। बेली इन दोनों के बीच प्रेमपूर्ण लेकिन स्पष्ट नेतृत्व का मॉडल प्रस्तुत करती हैं। इसमें बच्चे की भावना को देखा जाता है, फिर भी हानिकारक या अस्वीकार्य व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाता। लक्ष्य यह नहीं कि बच्चा हर समय तुरंत माने, बल्कि यह कि वह धीरे धीरे अपनी जरूरत व्यक्त करना, विकल्प देखना, परिणाम समझना और संबंध बनाए रखते हुए समस्या सुलझाना सीखे। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि पुस्तक सहयोग को चुपचाप आज्ञा पालन का दूसरा नाम नहीं मानती। सहयोग तब अधिक स्थायी होता है जब बच्चे को सीमाओं का कारण, अपने चुनाव की भूमिका और सुधार का रास्ता समझ में आए। हालांकि पुस्तक के कुछ निर्देश बहुत तयशुदा लग सकते हैं, इसका केंद्रीय आग्रह उपयोगी है। वयस्क को न तो डराना है न हार माननी है, बल्कि शांत होकर सीमा और सीख दोनों उपलब्ध करानी है। तीसरा, 7 बेसिक डिसिप्लिन स्किल्स के जरिए संघर्ष को सीखने की स्थिति बनाना। पुस्तक के 7 बेसिक डिसिप्लिन स्किल्स उसका व्यवहारिक केंद्र है। उपलब्ध विवरणों में विकल्प देना, प्रोत्साहन और परिणामों का उपयोग प्रमुख उदाहरणों के रूप में सामने आते हैं। इन कौशलों का साझा उद्देश्य बच्चे को केवल गलती रोकने के लिए मजबूर करना नहीं बल्कि कठिन स्थिति में अगला बेहतर कदम पहचानने में मदद देना है। विकल्प देने का अर्थ असीम छूट नहीं है। वयस्क पहले स्वीकार्य सीमा तय करता है और फिर उस सीमा के भीतर बच्चे को चुनाव देता है। इससे शक्ति संघर्ष कम हो सकता है क्योंकि बच्चे को सीमित लेकिन वास्तविक स्वायत्तता मिलती है। प्रोत्साहन भी केवल प्रशंसा से अलग है। इसका उपयोग बच्चे के प्रयास, उपयोगी निर्णय और विकसित होती क्षमता को पहचानने के लिए किया जाता है, ताकि उसका ध्यान बाहरी स्वीकृति से हटकर कौशल पर जाए। परिणामों के मामले में दृष्टि प्रतिशोध की नहीं, व्यवहार और उसके प्रभाव के संबंध को समझाने की है। इसीलिए वयस्क को परिणाम लागू करते समय अपमानजनक भाषा या भावनात्मक बदला लेने से बचना होता है। पुस्तक बड़बड़ाहट, भाई बहन के झगड़े, नियम तोड़ने और दैनिक प्रतिरोध जैसी स्थितियों को अभ्यास का अवसर मानती है। यह तरीका माता पिता से तत्काल चमत्कार की अपेक्षा नहीं करता, वह लगातार भाषा, सीमाओं और प्रतिक्रिया के अभ्यास की मांग करता है। इसकी उपयोगिता इस बात में है कि बच्चे को हर विवाद में दोषी ठहराने के बजाय समस्या सुलझाने की क्षमता सिखाई जाती है। चौथा, आत्मनियंत्रण से जीवन मूल्यों तक व्यवहार और चरित्र का संबंध। बेली की प्रणाली अनुशासन को केवल घर में शांति बनाए रखने का उपकरण नहीं मानती, वह इसे चरित्र निर्माण से जोड़ती है। वह पुस्तक में 7 वैल्यूज फॉर लिविंग का उल्लेख है, जिनमें इंटेग्रिटी, सम्मान, करुणा और जिम्मेदारी जैसे मूल्य शामिल है। यहां मूल्य अलग से पढ़ाए जाने वाले नैतिक उपदेश नहीं है, वे रोजमर्रा के संवाद में आकार लेते हैं। यदि माता पिता गलती के बाद बच्चे को शर्मिंदा करने के बजाय सुधार का मार्ग दिखाते हैं, तो बच्चा जिम्मेदारी को डर से बचने की रणनीति के बजाय संबंध सुधारने की प्रक्रिया के रूप में समझ सकता है। यदि वयस्क बच्चे की भावनाओं को नाम देने और दूसरे व्यक्ति के प्रभाव पर विचार करने में मदद करता है, तो सम्मान और करुणा अधिक ठोस बनते हैं। इसी तरह वयस्क अपने शब्द और व्यवहार में संगति रखे तो इंटेग्रिटी का मॉडल मिलता है। पुस्तक की ताकत यह है कि वो भावनात्मक कौशल और नैतिक व्यवहार को अलग नहीं करती। आवेग में धक्का देना, झूठ बोलना, चीज छीनना या गुस्से में चिल्लाना केवल नियम भंग नहीं, बल्कि ऐसी स्थितियां हैं जहां बच्चे को अपनी भावना, दूसरे की सीमा और बेहतर विकल्प का संबंध सीखना है। फिर भी इस दृष्टिकोण की सफलता माता पिता की निरंतरता पर निर्भर करती है। मूल्यों की भाषा तभी प्रभावी होगी जब घर में शक्ति का प्रयोग, माफी, सीमाएं और समस्या समाधान उसी भाषा से मेल खाते हो। इस कारण पुस्तक व्यवहार प्रबंधन को व्यापक पारिवारिक संस्कृति के प्रश्न में बदल देती है। अंत में 7 सप्ताह का कार्यक्रम, उदाहरणों की उपयोगिता और पद्धति की सीमाएं पुस्तक केवल सिद्धांत नहीं देती, बल्कि 7 सप्ताह का एक आरंभिक कार्यक्रम और अनेक व्यवहार प्रबंधन स्थितियां प्रस्तुत करती है। यह संरचना उन पाठकों के लिए उपयोगी हो सकती है जिन्हें सामान्य सलाह के बजाय क्रमबद्ध अभ्यास चाहिए। माता पिता किसी एक कौशल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अपनी सामान्य प्रतिक्रियाओं को देख सकते हैं और घर में इस्तेमाल होने वाली भाषा में छोटे बदलाव ला सकते हैं। घरेलू और स्कूल संदर्भों के उदाहरण यह भी दिखाते हैं कि दृष्टिकोण केवल छोटे बच्चों की आज्ञाकारिता तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक संघर्ष और भावनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा है। पाठक समीक्षाओं में इसकी व्यावहारिकता, स्पष्ट कदमों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों की सराहना मिलती है। साथ ही कुछ पाठकों को बार बार 7 की संरचना, पावर्स जैसे शब्द और तैयार वाक्यांश दोहरावपूर्ण या प्रचारात्मक लगते हैं। कुछ को यह भी लगता है कि पुस्तक अन्य पेरेंटिंग तरीकों की आलोचना करते हुए अपने उत्तरों को बहुत निश्चित रूप में रखती है। इन सीमाओं को ध्यान में रखकर इसे कठोर नियम पुस्तिका के बजाय अभ्यास ढांचे की तरह पढ़ना अधिक उपयोगी है। हर बच्चे की उम्र, विकासात्मक जरूरत, पारिवारिक तनाव और सुरक्षा संबंधी परिस्थिति अलग होती है, इसलिए वाक्यों की हूबहू नकल से अधिक महत्वपूर्ण है उनका सिद्धांत समझना, शांत रहना, स्पष्ट सीमा रखना, भावना को मान्यता देना और सुधार की जिम्मेदारी सिखाना। यह संतुलित उपयोग पुस्तक की पद्धति को अधिक लचीला और विश्वसनीय बनाता है। निष्कर्ष में, इजी टू लव, डिफिकल्ट टू डिसिप्लिन उन माता पिता, शिक्षकों और देखभाल करने वालों के लिए उपयोगी है जो बच्चों के गुस्से, विरोध, झगड़े या नियम तोड़ने को केवल नियंत्रण की समस्या मानने के बजाय सीखने और संबंध की समस्या के रूप में समझना चाहते हैं। विशेष रूप से वे पाठक इससे लाभ ले सकते हैं जो बार बार चिल्लाने, धमकी देने, मनाने या अंतहीन बहस करने के बाद अधिक स्थिर तरीका खोज रहे हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ इसकी स्पष्ट दिशा में है, वयस्क की प्रतिक्रिया को बदलना, बच्चे को सीमित विकल्प देना, परिणामों को सीख से जोड़ना और रोजमर्रा के संघर्षों में भावनात्मक शब्दावली विकसित करना। इसका बौद्धिक योगदान यह है कि यह अनुशासन को बच्चे पर लागू की जाने वाली शक्ति से हटाकर परिवार में आत्मनियंत्रण के साझा अभ्यास के रूप में रखती है। इसी कारण यह केवल व्यवहारिक टिप्स देने वाली कई पेरेंटिंग पुस्तकों से अलग दिखाई देती है। बेली का 7 पावर्स, 7 स्किल्स और 7 वैल्यूज वाला ढांचा माता पिता के मॉडलिंग, बच्चे के कौशल और चरित्र निर्माण को एक ही प्रणाली में जोड़ता है। हालांकि कुछ पाठकों को इसकी भाषा दोहरावपूर्ण, अत्यधिक सूत्रबद्ध या अन्य तरीकों के प्रति कठोर लग सकती है, इसलिए इसे अंतिम और सार्वभौमिक उत्तर मानने के बजाय एक उपयोगी अनुशासन दृष्टि के रूप में पढ़ना बेहतर है। जो पाठक इसके मूल सिद्धांतों को अपने बच्चे की उम्र, स्वभाव और परिवार की परिस्थितियों के अनुसार अपनाते हैं, उन्हें संघर्ष के क्षणों में अधिक शांत, स्पष्ट और सहयोगोन्मुख निर्णय लेने का आधार मिल सकता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं, बेकी ए. बेली, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।